वो जो माफिया टाइप लोग नहीं होते गैंगस्टर्स, ज्यादातर गारों में ऐसे लोग होते हैं। और फिर अगर एक खतरनाक सा कुत्ता भी सामने बैठा हुआ है तो फिर लोग घबरा कर और पीछे चले जाते हैं। फिर बात लिखते हैं कि क्योंकि ये लोग जिंदा थे और गहरी नींद सो रहे थे, तो इसका मतलब कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसके नेल्स और उसके बाल बढ़ते हैं। बास्कोरस लिखते हैं कि उनके बाल बहुत, अब इमेजिन करें 300 साल तक कोई आप बाल न काटें, या अल्लाह शायद इस पूरे घर में ही बाल फैल जाएंगे, मतलब अगर आप जिंदा हैं और आप हेल्दी इंसान हैं। तो बास्कोरस कहते हैं कि क्योंकि जिंदा थे तो उनके नाखून और बाल जो थे वो बढ़ गए थे, तो जाहिर बात है एक हैबत का सामान होता होगा। कुछ ने कहा कि अगर कोई इनको देखता था तो क्योंकि गार की गहराई में थे, डीप इनसाइड थे और रोशनी पूरी नहीं होती थी, रोशनी होती भी थी और नहीं भी होती थी, तो अगर कोई इस सिचुएशन में अंदर झांकता भी था और उसको लगता था कि एक शख्स, कुछ लोग लेटे हैं, वो करवट ले रहे हैं और सामने कुत्ता भी बैठा हुआ है, तो फिर वो घबरा कर वहां से भाग जाता था। और बाद ने कहा कि जब घबरा कर भागता था तो जाहिर बात है फिर वो देखा तो उसने, लेकिन किसी को जाके बताया नहीं खौफ के मारे। बाजू का तो आपके साथ भी ऐसा होता है ना, कुछ आपके साथ ऐसा खौफनाक होता है कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप किसी को दोबारा बताएं। आप कहती हैं लो इतनी मुश्किल से तो वाकया भूली गई थी, अब किसी को बताऊंगी तो दोबारा सारा याद हो जाएगा, और इनको बताऊंगी तो ये मुझे बार बार याद कराएंगी, मैं बता ही नहीं रही। तो ये कैफियत मुख्तलिफ हैं जो स्कॉलर्स ने तफसीर में लिखी हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं कि ये इनको जब अल्लाह ताला ने लिखा कि जब तुम देखते थे तो तुम डर कर भाग जाया करते थे। इसमें सबक क्या है कि अल्लाह की तरफ या अल्लाह के पास जो प्रोटेक्शन के लिए जाएगा, अल्लाह ऐसे मीन्स से, ऐसे सोर्सेस से उसकी प्रोटेक्शन करेगा कि इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये नौजवान जब उस इलाके को छोड़ के गए होंगे जो इनका अपना नेटिव लैंड था, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, ना इनके और साथी थे जो तौहीद पर स्टैंड लेते इनकी तरह जैसे इन्होंने स्टैंड लिया था, ना उस दौर में कोई नबी था जो इनकी मदद करता, ना उस दौर में इनकी फेवर में कोई स्टैंडिंग आर्मी थी जो इनको सपोर्ट करती। तो इनका कुल तवक्कुल किस पर था? जब असबाब नजर ना आ रहे हों, बाज़ औक़ात ऐसे मौका होता है कि इंसान कोशिश के बावजूद असबाब नहीं पाता, जब असबाब नजर ना आ रहे हों तो मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है, असबाब क्रिएट करने वाला अल्लाह है। और ये ईमान इंसान को अल्लाह की नज़र में ईमान के एंगल से बहुत एलिवेट कर देता है। आपके जेब में 2 करोड़ रुपए हों तो बहुत ही आसान है, आप सोचती हैं आपने क्या क्या शॉपिंग करनी, सही? लेकिन एक इंसान जो कोशिश के बावजूद मीन्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो जब तक उम्मीद से रहेगा और वो डिस्ट्रेस का शिकार नहीं होगा जब तक उसका तवक्कुल अल्लाह मजबूत होगा कि असबाब में ताकत नहीं है, असल ताकत असबाब को देने वाला तो ऊपर बैठा है जो कुल खजानों का मालिक है। यही चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आ रही है कि जब इन नौजवानों ने अल्लाह पर तवक्कुल करके पूरे माशरे के खिलाफ स्टैंड लिया तो अल्लाह ने अमेजिंगली इनको सपोर्ट किया कि ये मिरेकल ऑफ द हिस्ट्री बन गए, मिरेकल ऑफ द ह्यूमैनिटी बन गए, और अल्लाह ने इनको नेक लोगों के अंदर मेंशन करके यहाँ पर बता दिया। और अल्लाह ने कैसे इनकी मदद की? अल्लाह ने ऐसे इनकी मदद की कि इनको तो गहरी नींद सुला दिया, और जो इनके दुश्मन थे इनको उनसे जंग भी नहीं करनी पड़ी, इनको कोई झगड़ा भी नहीं करना पड़ा, इनको उनसे कोई डिबेट्स भी नहीं करनी पड़ी, ये तो मजे से जाके सो गए। और उसके पीछे अल्लाह ने 300 साल में उस पूरी कौम को पैरिश कर दिया, उस जालिम बादशाह को ख़त्म कर दिया, और जब इनको उठाया तो माहौल इनके लिए फेवरेबल था। सूरह कहफ की थीम लाइन याद रखें, When you will run towards Allah for the protection, He will give you protection. ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप अल्लाह से मदद मांगे सच्चे दिल के साथ और अल्लाह आपकी मदद ना करे। आयत नंबर 18 तक आयत नंबर 10 और 11 की तफसीर मुकम्मल हो गई। याद है हमने कहा था 4 इंट्रोडक्टरी बुलेट पॉइंट्स में आयात हैं और उसके बाद 14 से लेकर ऑनवर्ड 26 तक इन्हीं की तफसीर है। तो आयत नंबर 10 और 11 की तफसीर मुकम्मल हो गई। अब आयत नंबर 19 आ रही है और यहाँ से आयत नंबर 12 की तफसीर शुरू होगी। وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ इसी तरह हमने उनको नींद से जगाया ताकि वो एक दूसरे से सवाल पूछें। बाअसा को देखें दोबारा से, बाअस्नाहुम आ गया, और अल्लाह ताला पीछे डिस्क्राइब करते हुए आ रहे हैं कि ये बाअसा मौत के बाद का नहीं है बल्कि ये मौत की छोटी बहन पीठ के बाद उठाए जाने का है, यानी जगाने का है। इसीलिए आप इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकती हैं, इसी तरह हमने उनको नींद से जगाया, हमने उनको वेकअप किया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानियां दी थी, اللہ کی خاطر جو قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی زیادہ تر اس کی قربانیوں کا ریوارڈ دکھاتا ضرور ہے. تو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ کی خاطر اتنی قربانی دینے والوں کو اللہ نے اٹھایا تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی کیسے قدر کی ہے. آخرت میں تو انعام ملا ہی ملا، دنیا میں بھی اللہ نے قربانی دینے والوں کو اجر جو ہے اور اپنی رضا جو ہے وہ دکھا دی کہ اللہ قدردان ہے. اللہ کے لیے آتا ہے نا اللہ شاکر ہے، جب انسان کے لیے آتا ہے شاکر تو مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اللہ کے لیے آتا ہے شاکر تو مطلب ہوتا ہے اللہ قدردان ہے. اللہ ویلیو کرتا ہے ہر اس انسان کو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. گریٹیٹیوڈ والے انسان کو اللہ ویلیو سے دیکھتا ہے. تب وہ سب لوگ جو بھی ان نصاب کہاف کو سامنے رکھ کے، وہ سب لوگ جو اپنے اللہ کی خاطر، اپنے فیتھ کی خاطر، اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے آس پاس کے معاشرے کے ڈومیننٹ کلچر کو چھوڑتے ہیں، ان کو اس میں بہت بڑی بشارت ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہر وہ کلچر چھوڑنا جو آپ کی شریعت سے ٹکرا رہا ہے. جو بھی پاپولر کلچر کو چھوڑے گا، جو ڈومیننٹ کلچر کو چھوڑے گا اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ اس کے ایمان کو بھی بڑھائے گا اور اللہ اس کے ایمان کی قدر بھی کرے گا، اور اللہ اس کے انعام کے طور پر اس کے ایمان کی قدردانی اس کو دنیا میں بھی دکھائے گا. صرف انسان کا یقین ہونا چاہیے. ان نوجوانوں نے یہی قدم اٹھایا کہ اپنے لائف سٹائل چھوڑے، تو اللہ نے تین طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا. کیسے؟ انہوں نے جو اپنے گھر چھوڑے تھے وہ دنیا بنانے کے لیے چھوڑے تھے یا دین بچانے کے لیے چھوڑے تھے؟ دین بچانے کے لیے چھوڑے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی لائف سٹائل سے علیحدہ کریں گے تو آپ ریبیلیس ہو کے علیحدہ نہیں کریں گے. بعض لوگ دین کو اسکیپ روٹ بناتے ہیں اور گھروں کی ذمہ داریاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی بیلنس رویہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسکیپ روٹ کے طور پر نہیں نکلے تھے، انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے. دوسری بات، انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے لیے اس علاقے میں رہ کر توحید پر قائم رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آپ کو اور مجھے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہے تو الحمدللہ پاکستان 97% مسلمان آبادی کا ملک، لیکن اگر ہم نظر دوڑا کر اپنے اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں تو جو دین ہمیں قرآن اور رسول اللہ کی زندگی سیرت بتاتی ہے وہ دین ہمیں اپنے خاندانوں میں بھی نظر نہیں آتا. معاشرے میں تو بہت آگے کی اور بہت دور کی بات ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فوراً ہی کسی مشکل کے اوپر دین نہیں چھوڑے ہوں گے یا جگہ نہیں چھوڑے ہوں گے اپنے، بلکہ جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا اور ان کو لگا کہ اب بادشاہ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ مار دے گا یا سزا دے گا، تب انہوں نے وہ جگہ چھوڑی. تو اس میں آپ کے لیے اور ہر عمر کے مسلمان کے لیے سبق ہے، خاص طور پر اس میں نوجوانوں کے لیے بھی بہت سبق ہے. اور نوجوانوں کے لیے جو یہاں سن رہے ہیں وہ سنیں، اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالیں. آپ کو معاشرے میں اپنے آپ کو کاٹ کے زندگی نہیں گزارنی. اگر آپ دین پر ہیں تو آپ کو سوسائٹی میں اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے. اصول یاد رکھیں، وہ ماحول جو اللہ کی نافرمانی کا ہے آپ نے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو تبلیغ کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو ورڈ آف کمفرٹ بولنے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کو امید دلانی ہوگی، اس کے لیے آپ کو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوگا. اگر آج آپ اور میں پاکستان کے معاشرے کو فتنوں والا معاشرہ کہہ کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتنے کو پھیلنے کا موقع مل جائے گا. جب سچ چھپ جائے گا، جب حق چھپ جائے گا، تو باطل فالسہڈ فلرش کرے گا. حق بولنے کے لیے ہوتا ہے، حق چھپانے کے لیے نہیں ہوتا. اور آپ مستقل ان اصحاب کہف کی کہانی میں یہی دیکھ رہی ہیں، حق ڈکلیئر کیا جاتا ہے، حق آگے سے آگے ایک ریلے ریس کی طرح ہوتا ہے، اچھی بات کو آگے سے آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، اچھی بات کو آگے سے آگے پہنچایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالیں. ہاں یقیناً बच्चों के अंदर टेंडेंसी ज्यादा यही होती है कि जब वो ऐसे माहौल में मुस्तकिल रहते हैं कि जहां गुनाह होते हैं तो उनके कदम जल्दी फिसल जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, आपको उसके लिए उनकी बैकिंग स्ट्रांग करनी है। इसलिए कि जिन यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पहुंचते हैं वहां आप और मैं नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये क्या है कि हम उनको तबलीग ना करने दें। आपने उनको इतना मजबूत बनाना है कि वो जहां पहुंचें वो इस्लाम का मैसेज लेके पहुंचें, वो जिस तरह पहुंचें वो दीन की बात पर जम कर रहने वाले लोग हों। अगर बच्चा आपका दीन समझने के बाद घर में बैठ जाएगा तो फिर वो बात को आगे प्रमोट कैसे करेगा। जब आप और मैं कहें बाहर बहुत फितना है हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऑलरेडी मैंने और आपने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली। आपको और मुझे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी है। जो काम इस्लाम के खिलाफ हो रहा है उसको गलत नहीं कहेंगे। क्या सिखाता है कुरान? अमल बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर। गलत को गलत नहीं कहेंगे इसलिए कि लोग मुझे बुरा कहेंगे। तो फिर लोगों का खौफ है या रब का खौफ है? लोग इला है या रब इला है? ये मेरे लिए सोचने का फूड फॉर थॉट है। मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अल्लाह ने मुझे इस्लाम हो या अल्लाह ने मुझे कुरान हो, ये एक वेपन के तौर पर दिया है। हक आता है बातिल को मिटाने के लिए, हक कोनों में छुपने के लिए नहीं आता। आज हम सब मुसलमान औरतों को, हम सब औरतें ही बैठे हैं, अल्लाह करे कि ये मैसेज जो है मर्दों तक भी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है। हम मुसलमानों को आज हक को हक की असल फॉर्म में डिक्लेयर करने की जरूरत है। कब तक इल्म हासिल करते रहेंगे और सिटिंग डक्स बने रहेंगे? कब तक हम इल्म हासिल करेंगे और हमारे इखलाक दुरुस्त नहीं होंगे? कब तक हम कुरान पे कुरान खत्म करेंगे और कुरान का कंडक्ट, कुरान का इखलाक हमारे अमल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? कब तक हम कुरान के दावेदार अहलुल कुरान बने रहेंगे और कुरान के अहकामात को अपने 5 फुट के जिस्म पर नहीं अपनाएंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जहन्नुम का? कि जहन्नुम को खोल दिया जाए? आसमान के फटने का, जमीन के शक हो जाने का, अजाब के आ जाने का? डराने का दिल नहीं करता, लेकिन हम किसके इंतजार में हैं? किस चीज की उम्मीद हमें अमल में आगे नहीं दौड़ा रही? क्या पहले से है हमारे दिमागों की? क्या खौफ है हमारे कि हम हक पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं? बातिल को छुपना चाहिए और हक को फ्लरिश होना चाहिए, लेकिन दुख होता है देख के कि बातिल तो फ्लरिश करता है, बातिल आउटस्पोकन होता है और हक छुपा रहता है। मेरी नमाज तो बस घर की चार दीवारी में होनी चाहिए। अगर मैं अपनी वर्क प्लेस पर हूँ और नमाज का वक्त जा रहा है, अब मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगी, सब कहेंगे लो जी मौलवी ने नमाज शुरू कर दी। अगर ये मेरा एटीट्यूड है, अगर स्कूल और यूनिवर्सिटी में मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, देन आई हैव टू थिंक सो मैनी टाइम्स, 100 times इन अ डे अबाउट माई फेथ। अगर मुझे स्कूल कॉलेज में नमाज पढ़ते हुए हेसिटेशन होती है तो सोचने की जरूरत है। आपको और मुझे अगर अपनी किटी पार्टीज के अंदर नमाज पढ़ते हुए हेसिटेशन होती है, क्लब्स में नमाज पढ़ते हुए हेसिटेशन होती है, जिम जाके ये बात कहते हुए हेसिटेशन होती है कि प्लीज म्यूजिक बंद कर दें या कम कर दें, सोचने की बात है। हम सब खवातीन को जिम जाने का बहुत शौक है, अच्छी बात है अपनी सेहत का ख्याल रखना, लेकिन फिर खामोशी से वहां जाते जाएंगे और दावत का काम नहीं करेंगे। दावत के काम का मतलब ये नहीं कि आप कहें सब बैठ जाएं, कोई अपना वर्कआउट नहीं करेगा, आज मैं आप सबको दर्द दूंगी म्यूजिक के ऊपर, ऐसी बात तो नहीं हम करने की बात कर रहे। जस्ट वन लाइनर टू द अथॉरिटीज, जस्ट वन लाइनर टू योर फेलो, जो जो आपके बराबर में खड़ी वर्कआउट कर रही हैं, उनको भी बताएं। टीम अप होना है ना। यह साहब कहाफ क्यों इतने मजबूत थे? ये एक नहीं था, सोहबत थी इनके पास, कंपनी थी इनके पास। आप भी अपने साथ साथी इकट्ठे करें, इसी की जरूरत है। तो हिजरत अगर होगी किसी भी माहौल से तो वह ईमान बचाने के लिए होगी, और उस वक्त होगी जिस वक्त आप अल्लाह की बात मान नहीं पहुंचा सकेंगे। उन फ्रेंड्स का हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने उन फ्रेंड्स को छोड़ दें जो अब दीनी सर्कल के नहीं है। क्यों छोड़ दें? कौन बताएगा उनको दीन? आप छोड़ के बैठ जाएंगे तो उन तक अल्लाह की बात कौन पहुंचाएगा? आखिर आप और मैं भी तो उनका हिस्सा थे। किसी ने तो हमारे कान पर बात डाली, उन्हीं में से कोई था जिसने हमारे कान पर बात डाली और अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी और हमने उन एक्टिविटीज से अपने आप को दूर कर लिया। तो हम किसी की हिदायत का जरिया नहीं बनना चाहते? हम किसी को अल्लाह से जोड़ना नहीं चाहते? उस वक्त तक उन दोस्तों में रहें, ये रूल याद रखें, उस वक्त तक जब तक कि आपका अपना ईमान और अमल ना डगमगाए। द मोमेंट यू फील کہ اب آپ کو نیکی کرنا اچھا نہیں لگتا اور ان کی جیسی غلطیاں اور نافرمانیاں کرنا اچھا لگنے لگ گیا ہے, دین اٹس ٹائم ٹو ڈو ہجرا. موو آن, آپ چھوڑ دیں ان ساتھیوں کو, اور یہ آپ کو خود ہی ڈیسائڈ کرنا پڑے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. جب بندہ رب کی خاطر, کس کی خاطر, رب کی خاطر اپنی خواہشات کو ایک طرف کرتا ہے اور اطاعت کا قدم اٹھاتا ہے, تب رب قدردان ہوتا ہے. یاد رکھیں, اللہ کی فرما برداری ہر وقت آسان نہیں ہوتی ہے. آپ کو اپنے نفس کو کبھی کبھی بالکل سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی خواہش کو کبھی کبھی بالکل ایک طرف کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں, آپ نے اللہ کی خاطر اطاعت اپنائی ہے. کبھی کبھی بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اما اتنا کہتی ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو, کیا ہے میرا دل نہیں کرتا. کرتے ہیں نا بچے, اگر آپ بچہ ہیں وہ والا جس کو اما کہتی رہتی ہیں, اما کی خاطر نہیں, کس کے خاطر کام کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کریں. آپ کا دل نہیں چاہتا, گرمی کس کو نہیں لگتی ہے, کون سی یہاں بہادر خاتون کون سے مارس سے آئی ہیں, اب تو مارس پر بھی جو ہے دنیا پہنچنے والی, کون سی آئی ہیں خاتون نیپچون سے یا مارس سے جو کہیں کہ مجھے تو 45 ڈگری میں بھی اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بایا پہن کے کہ بس کیا بتاؤں, لگتا ہے ایسی لگا ہوا میرے ابائے میں, ہے کوئی ایسا؟ سب کو لگتی ہے گرمی, ہر ایک کو لگ رہی ہے. لیکن اگر ایک بچی کو ماں کہتی ہے کہ بیٹا پراپرلی کور کرو, اور بچی کہتی ہے ماں گرمی لگتی ہے, تو بچے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اماں کس کے لیے کہہ رہی ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتی, اگر پھر بھی ماں کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں کسی بڑی تکلیف سے بچانا چاہ رہی ہے. آخر بچوں کو ہم ویکسینیشن شاٹس لگاتے ہیں نا, کیوں لگواتا ہے, حالانکہ بخار آ جاتا ہے اس کے بعد, پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا ویکسینیشن شاٹ لگے گا تو اس کے بعد فیور ہو جائے گا, پھر بھی لگواتے ہیں کیوں, ایک بڑی بیماری سے بچانے کے لیے. ہاں گرمی لگے گی, اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے کام. اور جب انسان اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے, اللہ قدردانی کرتا ہے, اللہ بہت نوازتا ہے, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ امپاسبل سرکمسٹانسز میں سے ایسے ایسے خیر نکالتا ہے کہ انسان توقع نہیں کر سکتا. بیونڈ ایکسپیکٹیشن اللہ اجر دیتا ہے. یہ نوجوان جنہوں نے محل چھوڑا, غار میں آئے, پتھروں پر لیٹے, چٹانوں پر لیٹے, زمین پر لیٹے, اللہ نے ان کی اس چٹان پر پتھر پر لیٹنے کو اتنا کمفرٹیبل بنا دیا. ہم بستر کے اوپر, اے سیز کے اندر, کمفرٹیبل میٹریسز کے اوپر ایک رات سے زیادہ کتنی دیر سو سکتے ہیں؟ اٹھنے کا دل کرتا ہے نا, جب آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ نیند کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اگر آپ زبردستی لیٹے رہیں گے اور آپ ہیلدی ہیں تو آپ کی کمر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. باڈی کہتی ہے گیٹ اپ, ڈو سم ورک آؤٹ, موو آن, آگے بڑھو, چلو فزیکل ورک کرو. اتنے کمفرٹیبل بستر پر بھی ہم ایک رات سے زیادہ نہیں سو سکتے. اور وہ جو اللہ کی خاطر قدم اٹھانے والے تھے, اللہ کی خاطر نفس کو اپنے سٹیپ ڈاؤن کرنے والے تھے, اللہ نے ان کو اس زمین اور پتھروں کے اوپر 300 سال تک سلایا اور سکون سے سوتے رہے, بیچ میں اٹھے بھی نہیں. یہ ہے توکل. وہ آپ نے ایک نظم سنی ہوگی, اور وہ نظم جتنی اچھی لگتی ہے, جیسے اردو پوئٹری, کوئی اس کا اسلامک ٹریڈیشن سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسنس اسلامک ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ, متوجہ نہ ہوں تو کہنا. یعنی کہ بندے اور رب کے درمیان ایک طرح سے اللہ کا بندے کے لیے ایکسپیکٹیشنز کا اظہار ہے, کہ اللہ کہتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ, متوجہ نہ ہو تو کہنا, میری راہ میں چل کر تو دیکھ, راہ نہ کھول دوں تو کہنا, مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ, بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. ہمارے بچے کہتے ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے کرنے کو, میری ساری فرینڈس چھوٹ جائیں گے. ہم خواتین, ہم کہتے ہیں اگر میں نے یہ نہ کیا اپنے بچے کی شادی پہ, میرا خاندان مجھ سے ناراض ہو جائے گا. سوچ لیں, میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ. کوئی اسکول یونیورسٹی میں آپ کو ملا نہیں کہتا ہے؟ کوئی اسکول یونیورسٹی میں آپ کے اسکارف کا مذاق اڑاتا ہے؟ کوئی آپ کے نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتا ہے؟ ہم خواتین کو کوئی ہمارے اس پاپولر کلچر چھوڑنے پر, جو کہ معاشرے کا بلٹ ان پاپولر کلچر بنا ہوا ہے, अगर लोग हमें बातें सुनाते हैं तो हमें यह याद करने की जरूरत है, मेरे लिए मलामत सह कर तो देख, इकराम की इंतहा न कर दूं तो कहना। मेरे लिए लुट कर तो देख, रहमतों के खजाने ना लुटा दूं तो कहना। मेरे कूचे में बिक कर तो देख, करें तो अल्लाह के लिए काम, नफ्स को मारें तो अल्लाह की खातिर, अनमोल ना कर दूं तो कहना। मुझे रब मान कर तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूं तो कहना। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे खौफ में आंसू बहा कर तो देख, मगफरत का दरिया ना बहा दूं तो कहना। वफा की लाज निभा कर तो देख, अता की हद ना कर दूं तो कहना। बिला आखिर मेरा हो कर तो देख, हर किसी को तेरा ना कर दूं तो कहना। ये बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। ये अफसाना नहीं है, ये रियलिटी है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो अल्लाह की खातिर इस समुंदर में छलांग लगाने वाला हो। नहीं आएंगे, नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं थामेंगे इस्लाम को, नहीं थामेंगे सुन्नतों को, और अब भी कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। अल्लाह और इस्लाम आपको और मुझे पुकार रहा है, अल्लाह और इस्लाम मुझे और आपको बार बार बुला रहा है। हम कब तक दूर बैठे रहेंगे? हम कब तक अपनी दुनिया बनाने की फिक्र में रहेंगे? हम कब तक दीन की कदर नहीं करेंगे? मैं अपनी बात कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ, और ख़ासतौर पर जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनसे, और बच्चियों के थ्रू बच्चियों की माओ से, इसलिए कि इंशाल्लाह आपके हाथ में अगली नस्ल है, और आप माएँ हैं तो आपके हाथ में आपकी बेटियाँ और आपके बेटे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्नहुम फितयतुन कहा था। आपको बताई थी ये बात कि यूजुअली कुरान का ये अंदाज़ नहीं है कि कुरान बहुत डिटेल्स में जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एडल्टहुड दी थी, जब उनकी उम्रें ऑलमोस्ट 40-40 साल हुई थी, उसको तो मेंशन किया गया है, लेकिन जनरली अल्लाह का अंदाज कुरान में नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक एज मेंशन की हो किसी वाक्य के ऊपर किसी की। मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ के ऊपर बुलाकर जिस वक्त नबूवत दी गई थी, आपकी उम्र मेंशन नहीं की गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जो है वो एक टुप्पी को मुक्का मार के हलाक कर दिया था, पंच मार के, आपकी उम्र मेंशन नहीं की गई। यहाँ अल्लाह ताला ने उम्र को मेंशन किया है कि ये नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए हिजरत फरमाई थी। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों में नौजवानों को एक खास मैसेज देना चाह रहे हैं, और हर स्कॉलर ने इसके ऊपर बात की है, हर तफसीर में आपको इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ज़रूरत इसी बात की है कि हम इस चीज़ को समझें। जो यूथ होती है, जो नौजवान होते हैं, उनके ऊपर माहौल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उनके ऊपर माहौल का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, बहुत एंगल से। पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, यूनिवर्सिटी प्रेशर, सब सबसे ज़्यादा होता है। आप में से जो भी बच्चे ए लेवल्स वाले यहाँ बैठे हैं, इंटर वाले यहाँ बैठे हैं, या वो माएँ जिनके बच्चे इस एज ब्रैकेट में, आपको नहीं लगता आपका बच्चा इधर ए लेवल स्कूल में जाता है और जब वहाँ से बाहर निकलता है तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी के साथ निकलता है? या आपकी ऑब्जर्वेशन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट ये अक्सर होता है कि बच्चे ए लेवल्स के बाद, इसलिए कि ये एज वो आपकी आती है, दिस इज़ बिटवीन 17 to 19, ये एज मैक्सिमम टीनेज होती है आपकी, पूरी आपकी टीनेज अपने बूम पर होती है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी अपने जो हैं वो पूरे उरूज पर होते हैं। जो बच्चे इस हाई स्कूल सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से निकलते हैं या इस सिस्टम में आते हैं, माओ को और आपको खुद अपनी पर्सनैलिटीज में एक शिफ्ट नजर आता होगा। वो बच्चा, वो लड़का जिसकी दाढ़ी है और वो किसी कॉलेज या हाई स्कूल में जाता है और वो देखता है कि आसपास किसी की दाढ़ी नहीं है, तो उसकी दाढ़ी जो है वो प्रॉपर दाढ़ी से वो पेंसिल आउटलाइन में आ जाती है। वो बच्ची जो स्कार्फ पहनते हुए जाती है, पॉपुलर कल्चर उसको अपने आसपास यह नजर आता है कि मेजॉरिटी स्कार्फ नहीं पहनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कार्फ एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से माहौल की बदलना शुरू हो जाता है। ये है, ये सब चीज़ें हैं, ये अट्रैक्शन है, लेकिन इस अट्रैक्शन के बावजूद वो नौजवान, और इन टेम्पटेशन के बावजूद वो नौजवान जो कल्चर और फेथ को एक चीज में चॉइस करते हैं, जहां उनको लगे कि अब ये कल्चर मेरे ईमान और मेरे फेथ से टकरा रहा है, वहां वो किसको सेलेक्ट करते हैं? मेजॉरिटी किसको सेलेक्ट करती है? कल्चर को। और वो नेक बच्चे जिनको अल्लाह का खौफ होता है, वो शाब जिसके आपको हदीस के अल्फाज बताए थे कि जो अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ता है, जो फेथ में राइज होना चाहता है, जो अपने ईमान में एलिवेट होना चाहता है, वो उस पॉपुलर कल्चर के पीछे जाते हैं या वो अपने फेथ को संभालने की फिक्र करते हैं। फिर चाहे उसको फ्रेंड्स से हिजरत करनी पड़े, वो हिजरत करता है, लेकिन वो अपने ईमान को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और यह हम सब पर अप्लाई करता है, जिस माहौल में हमें लगे कि हमारा ईमान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कल्चर का हिस्सा हमें लगे कि हमारे ईमान को रस्टेड कर रहा है, हम वो कल्चर नहीं अडॉप्ट कर सकते, उससे हमें दूर रहना है। हमारी जो यूथ है, असल में ये कुरान का मैसेज है कि हम इस फिक्र में रहते हैं ना कि अपने हम नौजवानों को कैसे यूथ लीडर बनाएं, हम अपने नौजवानों को क्या खिलाएं घोल कर इंस्टेंटेनियसली, कि वो जो है वो एक बिल्कुल एक वलीउल्लाह फॉर्म के मुसलमान निकल के आ जाए। क्या करें उनके साथ? ये आपको असाबे कहफ बता रहे हैं कि असल में ये बड़ों का काम नहीं है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ये बच्चों का यूथ का काम है कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना। ये यूथ का काम है कि अपने ईमान के डिक्लेरेशन के साथ और लोगों को उस एनर्जी के साथ दीन में लेकर आना कि जो एनर्जी उनके अपने अंदर होती है। अपने बच्चों को और आप सबको पीपल ऑफ विजन बनना पड़ेगा। ये गोल तो सभी का होता है, मैं ये वाला करियर अडॉप्ट कर लूं, मैं ये डिग्री ले लूं, मेरी ये जॉब हो जाए, फलां मल्टीनेशनल में मुझे जॉब मिल जाए, फलां जगह जो है मेरे वो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हो जाएं, मेरी शादी हो जाए, पसंद की गाड़ी हो जाए, अपनी पसंद का घर हो और पसंद की जगह पर हर साल वेकेशंस पर जाऊं। ये गोल तो सबके होते हैं। थिंक हाई, अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मत वसत बनाया है। अल्लाह के रास्ते में आपको और मुझे अगर कोई थोड़ा सा मुलामत या थोड़ा सा जो है वो किसी के माथे के बल सहने पड़ते हैं या एक दो फ्रेंड्स छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। आखिरत में सब आपको मिल जाएंगे अगर अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जो इल्म दिया है, इस इल्म को दीन को एलिवेट करने में इस्तेमाल करें। थिंक ऑन अ बैलेंस स्केल, अपने बच्चों के लिए भी सोचें और बच्चे भी सोचें। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सेक्युलर नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। आप अपना जो भी करियर अडॉप्ट करेंगे, आपका वो करियर अल्टीमेटली आपको ईमान में एलिवेट करे, एंड यू शुड बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सोसाइटी को दे रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली तीन काम पकड़ लें और अपने बच्चों को पकड़ा लें प्रैक्टिकली। मैं कोई नहीं कह रही बहुत बड़े बड़े जो हैं वो आपको ऐसे में टारगेट दे दूं जो ना आप अचीव करवा पाएं ना आपके बच्चे अचीव कर सकें। प्रैक्टिकल टारगेट, एक आपके बच्चे में इबादत का एसेंस मेंटेन रहना चाहिए, 5 वक्त की नमाज ना छूटे, दिस इज बेयर मिनिमम। इबादत अल्लाह की प्रॉपरली की जाए। जब बच्चा पूरी रात, रमजान की रातें हैं और अल्लाह के बंदे ये 3 घंटे अपने जो इतनी छोटी सी रात है उसको इबादत में गुजार रहे हैं, 90% यूथ सोती नहीं है रात और सहरी के दरमियान में, क्या करते हैं? या गेम्स हैं, या एक्सबॉक्स है, या निंटेंडोज हैं, या टैबलेट्स हैं, या फोन्स हैं, या गेम्स हैं, या चैटिंग है, कहाँ भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजें पढ़ें, तो आपको प्यार मोहब्बत से ये बातें सिखानी पड़ेंगी कि बेटा जल्दी सोने की आदत डालो, फजर की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, कि जब आँख खुलेगी जब पढ़ लूंगी या जब पढ़ लूंगा। और अगर किसी को अपनी फजर की नमाज पढ़नी है, खाली जायनमाज बिछा के अम्मा को नहीं दिखाना, बस बच्चे जायनमाज बिछा के वहीं छोड़ देते ताकि जब अम्मा आए तो उनको यकीन हो जाए कि मेरा बच्चा उठा था, चांद सा बच्चा मेरा, और उसे नमाज पढ़ी थी और मेरा चांद सा बच्चा अपने बिस्तर पर जाके फिर सो चुका है। अम्मा को कोई फायदा नहीं है आपकी नमाज से, सिर्फ इतना कि आप उनका सदका जारिया बन जाएंगे, आप अपने आप को जहन्नुम से बचा लेंगे। इससे बड़ा तो कोई और अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। एक, अपनी नमाजों को थाम के रखें। और थामे कैसे? कि नमाज को नमाज के वक्त में पढ़े, फर्ज नमाज। दूसरा, अपने बच्चों को टारगेट दें और अपने लिए भी टारगेट रखें। अभी रमजान है ना, अपने आप को टारगेट दें कि मैंने इस रमजान से अगले रमजान तक कोई एक सूरत याद करनी है, और मैं सूरतुल इखलास नहीं कह, कोई अपने आप को गोल दे दीजिए, सूरत रहमान दे दीजिए, सूरत मुल्क दे दीजिए, सूरह कहफ दे दीजिए, जो आपको मुनासिब लगते हैं, और अपने बच्चों को भी एक टारगेट दें। और जब सूरत याद की जाती है तो उसका मफहूम समझ के याद किया जाता है। याद रखें, हिफ्ज़ के अंदर سارے اسکالرس کے لیے یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جب کوئی چیز حفظ کی جاتی ہے تو اپنے پورے مفہوم کے ساتھ حفظ کی جاتی ہے. روٹ لرننگ نہیں ہے اسلام میں, روٹ لرننگ قرآن میں بھی نہیں ہے. حفظ کیا جاتا ہے پورے مفہوم کے ساتھ. تو ایک, پانچ وقت کی نماز, نماز کے وقت کے اوپر. دوسرا, قرآن کی تلاوت. اور ایک مرتبہ آپ دن میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, میں رمضان کے علاوہ بات کر رہی ہوں, رمضان میں آپ جتنی کریں اتنی کم ہے. رمضان کے علاوہ فجر کے لیے آتا ہے نا, فجر کا قرآن کا نہ مشہودہ. دن میں ایک مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, آپ کو سارا دن اس کا سکون اور احساس اور برکتیں محسوس ہوتی رہتی ہیں. بچے سو کہیں ایک دن میں قرآن کا صفحہ یا ایک رکوع ضرور پڑھنا ہے. اور تیسری چیز, مائیں ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو, خاص طور پہ میں کہہ رہی ہوں جو بڑے ہیں الحمدللہ, ٹین ایج بچوں کو پبلک سروس میں لے کر آئیں. ہمارے بچے تو اماں کی سروس میں نہیں آتے, وہ پبلک سروس میں کیسے آئیں گے؟ سوشل ورک کہاں سے کریں گے؟ اماں کے ساتھ تو ہاتھ بٹاتے نہیں پکوڑے بنانے میں. آپ کو ان کو لانا پڑے گا, ان کو والنٹیئر کروائیں, ان سے کوئی سوشل ایکٹیویٹی کروائیں. جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے اندر سے, اپنے شیل سے نکل کر باہر سوچنے کا موقع ملے گا. یہ جو میں نے آپ کو بلون کی مثال دی تھی, اٹ ایکچولی سپر فٹ آن دا ٹین ایجر. آج ہر ٹین ایجر اپنے ایک ککون یا بلون کے اندر رہتا ہے, اور اس کے, اس بلون کے اندر اس کی گیمز ہیں, اس کا موبائل ہے, اس کے فرینڈز ہیں, اس کا آئی فون لیٹسٹ ہونا چاہیے, اس کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے. وہ اس ککون سے باہر نہیں نکلتا ہے. تھنک آؤٹ آف دا باکس. ذرا ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس اس وقت پنکھے بھی نہیں ہیں. ہمارے اے سی بند ہوتے ہیں تو ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پنکھا بند ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا ہے, پنکھا کیوں بند ہو گیا, میں تو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوں. ان سے پوچھیں جن کے گھروں کی چھت ٹین کی ہے, ان سے پوچھیں جن کے گھروں کی چھت پہ کپڑا لگا ہوا ہے, چھت نہیں ہے, خیموں میں رہتے ہیں, ٹینٹس میں رہتے ہیں. جب تک ہم اپنے بچوں کو ان کے لگژریس لائف اسٹائل سے باہر نہیں نکالیں گے, ان کو دین کی قدر نہیں آنے والی. ہمارے بچے اور ہم سیلف سینٹرڈ سیلفش ہیومن بینگس بن چکے ہیں, ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا. آج ہر انسان زبان سے کیا کہتا ہے, بھائی میں بہت سینسیٹیو ہوں. یہ لو جی, یہ کون سی بڑی بات آپ نے کی؟ کون اپنے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتا؟ مسلمان وہ جو سامنے والے کے لیے سینسیٹیو ہو, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے باہر نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی نعمتیں کافی لگیں, کنٹینٹمنٹ آئے تمہارے اندر, اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں نیکیاں کرنے کا انسینٹیو ملے. اپنے بچوں کو اگر ہم وہ ایمان دینا چاہتے ہیں جو ان اصحاب کہف کا تھا, صرف سٹوری ٹیلنگ کے لیے تو ہمیں قرآن نہیں کچھ یہ دے رہا نا, سب کچھ انفارمیشن عمل بدلنے کے لیے دے رہا ہے. اب بھی نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب بھی نہ اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ کیا ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ دو لمحے کی اور مہلت دے دے؟ اللہ ہمارے لیے اس رمضان کو ہماری زندگی کی ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بنا دے. اپنے بچوں کو ہائر گولز دیں, اپنے بچوں سے کہیں بہترین کریئرز اڈاپٹ کریں, مارکیٹنگ میں جائیں یا اکنامکس میں جائیں یا میڈیسن میں جائیں. میڈیسن پڑھنے کے بعد بلڈ تھرسٹی ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, منی تھرسٹی ڈاکٹر ہوتا ہے, اصل میں بلڈ تھرسٹی ڈاکٹر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں زیادہ تر کیا کلچر بن گیا ہے آپ سب دیکھ لیں. لوگوں کو اس وقت, بچوں کو اپنی نسل کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام سسٹمز بنانے کی بات کرتا ہے نا, اپنے بچوں کو اکنامکس سکھائیں, مارکیٹنگ سکھائیں یا میڈیسن سکھائیں یا کوئی بھی آپ ان کو جو ہے وہ برانچ کی طرف لے کر جائیں. ان سے کہیں کہ بڑا ویژن رکھیں, لوگوں کو امپلائمنٹ فراہم کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے جو بہتر ہو. صرف اور صرف اپنا گھر نہ بنایا جائے, صرف اور صرف اپنی ڈیڑھ رینٹ کی مسجد کمفرٹیبل نہ بنائی جائے. کیوں نہ ہم اپنے معاشروں کو ٹرانسفارم کریں؟ ہمارے سیاستدان تو نہیں کرنے والے, نظر تو نہیں آ رہا. اللہ کوئی اپنی طرف سے مدد بھیج دے تو بھیج دے, مگر کوئی فرشتہ ایسے نہیں اترنے والا جب تک کہ یہاں سے لوگ قدم نہیں اٹھائیں گے. اپنے اپنے علاقوں کو ذمہ داری کے ساتھ لے لیں, اور یہ بچوں کے اندر آپ کو چیز ڈالنی پڑے گی, رسپانسبلٹی کا احساس ڈالنا پڑے گا. اور جب تک ان کا اپنا دل ٹرانسفارم نہیں ہوگا, وہ شہروں کو, علاقوں کو اور ملکوں کو اور قوم کو بہتری کی طرف ٹرانسفارم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس دین کو अपने अंदर रिफ्लेक्शंस में लेकर आना और इसको डीप डाउन अपने अंदर इंग्रेंट करना इसको आसान बना दे। अल्लाह हमें अपनी कदर करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे लिए अपनी मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत बना दे। अल्लाह हमें इस्लाम की नेमत पर शुक्र अदा करने वाला बना दे। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें रुसवा ना करना। अल्लाह हमें यही तौफीक दे दे कि हम अपना जो है यहीं पर इस्लाह कर लें, हम अपनी गलतियों को यहीं रेक्टिफाई कर लें। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़अनी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन, मैंने आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।